लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 8 दिसंबर को मरियम के निष्कलंक आगमन महापर्व के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रतेली ए सोरेले, बोंजोर्नो। ओजी चेलेब्रियामो La solennità di Maria Immacolata।
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज हम मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का महापर्व मना रहे हैं, जो आगमन काल प्रतीक्षा की घड़ी की पृष्ठभूमि पर रखी गई है। ईश्वर उसे पूरा करेंगे जिसकी उन्होंने प्रतिज्ञा की है। संत पापा ने कहा, किंतु आज के पर्व में हमें बतलाया गया है कि कुंवारी मरियम के जीवन में पहले ही कुछ पूरा हो चुका था। इस पूर्णता की शुरुआत आज होती है, जो प्रभु की माता के जन्म से पहले की घटना है। वास्तव में उनका निष्कलंक गर्भागमन हमें उस विशेष घड़ी की ओर प्रेरित करती है, जब मरियम का जीवन उनकी माता के गर्भ में पलने लगा। वहीं ईश्वर के विशुद्ध प्रेम ने उन्हें बुराई के हर स्पर्श से बचाए रखा, जो मानव परिवार की सामान्य देन है। आज के सुसमाचार पाठ में मरियम को स्वर्गदूत का अभिवादन गूंजता है। प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। ईश्वर ने अपने रहस्यमय योजना में कृपा से पूर्ण सृष्टि पर हमेशा विचार किया और कामना की जो उनके प्रेम से परिपूर्ण हो, किंतु भरे जाने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता है। अपने आप को खाली करना, जैसा कि मरियम ने किया। वे ईश्वर की वाणी को सुनना एवं उनकी इच्छा पर पूरी तरह भरोसा रखना और अपने जीवन में स्वीकार करना जानती थी। इस तरह शब्द ने उनके गर्भ में शरीर धारण किया। यह उनके हाथ से संभव हुआ, जिसको उन्होंने स्वर्गदूत के सामने कहा था। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। दूत के संदेश पर मरियम की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा,
मरिया नॉन सी पेर्डे इन टांटी रचोनामेंटी।
मरियम को तर्क नहीं की, ना ही प्रभु के आगमन पर बाधा डाली, बल्कि तुरंत विश्वास की और पौत्रात्मा के कार्य के लिए स्थान दिया और अपने पूरे अस्तित्व को प्रभु को चढ़ा दिया, ताकि उनके शब्द और उनकी इच्छा पूरी हो जाए। इस तरह ईश्वर की इच्छा का पूर्ण पालन कर मरियम अति सुंदर और अति पौत्र बन गई, जिनमें पाप का छोटा सा दाग भी नहीं है। एक उत्कृष्ट कृति होते हुए भी वे दीन, विनम्र और गरीब बनी रही। उनमें ईश्वर की सुंदरता की झलक दिखाई पड़ती है, जो प्रेम, अनुग्रह और आत्म त्याग में निहित है। संत पापा ने कुंवारी मरियम के हाँ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मैं यहाँ मरियम के शब्द हाँ को रेखांकित करना चाहूँगा, जिसके द्वारा उन्होंने अपने आप को ईश्वर के लिए एक दासी के रूप में समर्पित किया। मरियम द्वारा ईश्वर को हाँ कहना शुरू से ही सेवा के मनोभाव में, दूसरों की जरूरतों की ओर ध्यान देने में प्रकट हुई। वास्तव में एलिजाबेथ से मुलाकात, जो स्वर्गदूत के संदेश के तुरंत बाद हुई, इसका साक्षात उदाहरण है। ईश्वर के प्रति तत्परता, जो दूसरों की मदद करने की चाह में परिलक्षित हुई, ये सारी चीजें कोलाहल और अडंबर से रहित थीं। इसमें न सम्मान और न ही विज्ञापन की खोज थी, क्योंकि उदारता एवं दया के कार्यों के लिए जीत की तरह प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। करुणा के कार्य चुपचाप, शांत भाव से, बिना डींग मारे की जाती है। संत पापा ने कहा कि हमारे समुदायों में भी हम मरियम के उदाहरणों को अपनाने के लिए बुलाए जाते हैं। संत पापा ने प्रार्थना की कि हमारी माता का पर्व हमें अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के हाँ के लिए अर्पित करने में मदद दे, अपने दैनिक जीवन में प्रेम एवं सेवा द्वारा उनकी आराधना करने हेतु हाँ के लिए। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Concepite Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्वासियों को संबोधित करते हुए कहा,
Ieri a Huehuetenango in Guatemala è stato beatificato Giacomo Miller.
कल ग्वाटेमाला के वेवेतेनांगो में जाकोमो मिलर की धन्य घोषणा हुई, जो ख्रिस्ती स्कूल के धर्म बंधुओं के धर्म संघ के सदस्य थे। वे युद्ध के कारण 1982 में विश्वास के लिए शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के इस आदर्श शिक्षक की शहादत, जिन्होंने ग्वाटेमाला की कलीसिया एवं लोगों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया, इस प्यारे देश को न्याय, शांति और एकात्मकता के रास्ते पर सुदृढ़ करे। तब संत पापा ने ताली बजाकर धन्य जाकोमो मिलर को सम्मानित किया।
Un applauso al nuovo beato.
उसके बाद संत पापा ने पेरिस में होने वाली सभा के प्रति अपनी प्रार्थना का आश्वासन देते हुए कहा, कल पेरिस में यूक्रेन, रूस और फ्रांस के राष्ट्रपतियों तथा जर्मन चांसलर की एक सभा होगी। सभा में पूर्वी यूक्रेन में वर्षों से चल रही दुखद संघर्ष के समाधान पर विचार किया जाएगा। मैं प्रार्थना के द्वारा सभा का साथ देता हूँ, क्योंकि वहाँ शांति की जरूरत है। उन्होंने विश्वासियों से भी प्रार्थना करने का आग्रह किया, ताकि इस राजनीतिक वार्ता के द्वारा उस क्षेत्र एवं वहाँ के लोगों के लिए शांति और न्याय लाया जा सके। तत्पश्चात संत पापा ने इटली एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का अभिवादन किया।
Saluto con affetto tutti voi, pellegrini dell'Italia e di vari paesi.
खासकर उन्होंने पोलैंड के विश्वासियों, आयरिश के पुलिस कर्मियों एवं सोरबारा के युवाओं का अभिवादन किया। संत पापा ने क्रूस के पुत्रों का विशेष रूप से अभिवादन किया। उन्होंने याद किया कि निष्कलंक गर्भागमन पर्व के अवसर पर इटली की पल्लियों में कैथोलिक एक्शन दल अपनी सदस्यता दोहराती है। उन्होंने सभी दलों एवं सदस्यों को सेवा एवं साक्ष्य के रास्ते पर चलने के प्रशिक्षण की शुभकामनाएं अर्पित की। उन्होंने रोक्का दी पापा के विश्वासों एवं निष्कलंक मरिया के सम्मान में प्रकाश, जिसके द्वारा शहर के दुर्ग में स्थापित सितारे को प्रज्वलित किया जाएगा, उस पर अपनी आशीष प्रदान की। तब उन्होंने लोरेटो के मरियम तीर्थ की भी याद की, जहां रविवार को लोरेटन जयंती का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कामना की कि यह सभी तीर्थयात्रियों के लिए कृपा से सम्पन्न हो। तत्पश्चात संत पापा ने रोम के प्याजा इस्पानिया में माता मरियम को फूलों का हार चढ़ाकर सम्मानित करने की परंपरा की याद दिलाते हुए कहा,
Vi chiedo di unirvi spiritualmente a me in questo gesto che esprime la devozione filiale alla nostra madre celeste.
कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप इस समारोह में आध्यात्मिक रूप से मेरे साथ जुड़े, जो हमारी स्वर्ग की माता के प्रति बाल तुल्य भक्ति है। अंत में उन्होंने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को पर्व एवं माता मरियम के संरक्षण में क्रिसमस की ओर आगमन काल की यात्रा की शुभकामनाएं अर्पित की।
Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
sera tu, o meri maa, o maa tu hi sahara, o maa tu hi sahara.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज सोमवार 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस है। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट प्रेषित कर भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सभी लोगों को प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, भ्रष्टाचार व्यक्ति की गरिमा को कम करता है और सभी अच्छे एवं सुंदर आदर्शों को चकनाचूर कर देता है। समाज के सभी लोगों को भ्रष्टाचार के कैंसर से लड़ने के लिए एक ठोस प्रतिबद्धता बनाने का आह्वान किया जाता है, जो क्षणिक और आसान मुनाफे के भ्रम में है। वास्तव में यह सभी को प्रभावित करता है। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में बोलोनिया धर्म प्रांत से आए धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सेमिनारियों से मुलाकात की, जो पोंटिफिकल रीजनल फ्लामिनियो सेमिनरी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के अवसर पर वाटिकन आए हुए हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल मतेओ जुप्पी को उनके परिचय भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, यह महत्वपूर्ण वर्षगांठ पुरोहितिक बुलाहट की सुंदरता पर चिंतन करने का सुनहरा अवसर है, साथ ही भले चरवाहे के रूप में अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने की प्रतिबद्धता देता है। संत पापा ने कहा कि कलीसिया के मिशन की तैयारी के लिए माता कलीसिया सेमिनारियों के प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने का आह्वान करती है। इस परिपेक्ष में संत पापा ने तीन पहलुओं को इंगित किया। सेमिनरी भावी पुरोहितों का प्रशिक्षण स्थान है, यह प्रार्थना का घर है, यह अध्ययन का घर है और यह समुदाय का घर है। संत पापा ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में सुसमाचार का प्रचार करने हेतु बुलाए गए हैं। अनिश्चितता या धार्मिक उदासीनता की ठंडी हवा के संपर्क में आने वाले लोगों को उस पुरोहित की जरूरत है जिसका विश्वास मजबूत हो, जो रात में एक मशाल की तरह हो और एक चट्टान की तरह मजबूत हो। यह विश्वास यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करके प्राप्त की जा सकती है। सेमिनरी प्रार्थना का घर है, जहां प्रभु एकांत जगह में अपने पास बैठने, सुनने और एक मजबूत अनुभव को जीने के लिए बुलाते हैं। वे उन्हें विश्वास में ईश्वर के लोगों को शिक्षक बनने के लिए तैयार करना चाहते हैं और उन्हें अधिकार के साथ ईश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए और उन्हें उद्धार के मार्ग में ले जाने के लिए संस्कारों को प्रदान करने हेतु सक्षम बनाते हैं। आगे संत पापा ने कहा कि अध्ययन एक जीवित और सचेत विश्वास की शिक्षा के उद्देश्य से इस यात्रा का अभिन्न अंग है। भावी पुरोहितों के प्रशिक्षण में अध्ययन एक ठोस और वैज्ञानिक ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है। यह पुरोहितों के भावी जीवन के लिए एक ठोस आधार सुनिश्चित करता है। यह ज्ञान को साझा करने का एक साधन भी है। अध्ययन की प्रतिबद्धता सेमिनरी में भी स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। सेमिनरी साथियों के साथ पाठ साझा करना और अध्ययन करना भी समुदाय का हिस्सा बनने का एक तरीका है। व्यक्तिगत झुकाव और प्रतिभाओं की उपेक्षा किए बिना वास्तव में सेमिनरी में वे एक सामान्य मिशन के लिए एक साथ अध्ययन करते और पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास, कानून और अन्य विषयों को सीखने के लिए एक बहुत ही विशेष स्वाद देता है। सेमिनरी एक समुदाय है जहां छात्र एक दूसरों के साथ खुलकर बातें करते और संवाद करते हैं। धर्माध्यक्ष के मार्गदर्शन में उन्हें पल्ली सामुदायिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। सेमिनरी में अपने भाइयों के बीच बंधुत्व और उदारता की भावना को विकसित करते हैं। सेमिनरी का सामुदायिक जीवन पुरोहित के रूप में अपने पल्ली समुदाय में पल्ली वासियों को समझने और भाईचारे का अभ्यास करने में मददगार होता है। अंत में संत पापा ने कहा कि कल यानी 8 दिसंबर को हमने माता मरियम के निष्कलंक गर्भाधान का त्योहार मनाया। माता मरियम ने ईश्वर के प्रेम की योजना को विनम्रता के साथ स्वीकार किया और अपने बेटे का पालन पोषण किया। यीशु को हर समय, यहाँ तक कि क्रूस पर मृत्यु के समय भी उनके साथ रहीं। माता मरियम हमारे जीवन के मोती यानी अपने बेटे यीशु को खोजने में हमारी मदद करें। साथ ही संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के लोकसभा परिषद भवन में जीवन में एक मौका नामक संस्थान के समर्थकों से मुलाकात की। संत पापा ने संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोनसिन्योर जॉन पैट्रिक द्वारा शुरू किया गया यह संगठन वर्षों से विभिन्न प्रकार की शैक्षिक पहल का समर्थन करता आ रहा है। ये पहल बच्चों और किशोरों को विशेष कठिनाइयों की परिस्थितियों में अपनी कठिनाइयों को दूर करने और उनमें से प्रत्येक के लिए पूरी तरह से ईश्वर की योजना को साकार करने का मौका प्रदान करती है। संत पापा ने कहा कि इस संस्था के संस्थापक की इच्छा थी कि इटली में राष्ट्रीय किशोर नगर को विकसित किया जाए, जहां स्वशासन पर आधारित एक शैक्षिक पद्धति के अनुसार वंचित युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। संत पापा ने समर्थकों की उदारता की सराहना करते हुए कहा, अपने मूल करिश्मे की रचनात्मक निष्ठा में संगठन एक ऐसी दुनिया में अपने मिशन को अंजाम देने के लिए अधिक निर्णायक और प्रभावी होने का प्रयास कर रही है, जो नई शैक्षिक चुनौतियों को प्रस्तुत करती है कि नई पीढ़ी को मानव व्यक्ति पर केंद्रित एक सक्रिय और भागीदारीपूर्ण नागरिकता के अभ्यास में प्रशिक्षित करना और पर्यावरण की देखभाल करना आवश्यक है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी नवीकरण की भी आवश्यकता होती है। युवा लोग इसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 8 दिसंबर दोपहर को परंपरानुसार रोम स्थित पियाजा दी स्पानिया पहुँचे और प्राचीन रोमन स्तंभ के ऊपर माता मरियम की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की। संत पापा ने रोम और दुनिया भर के उन सभी को माता मरियम को सौंपा जो पाप के कारण हतोत्साहित बोझ से दबे हुए हैं। वे लोग सोचते हैं कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। संत पापा ने निष्कलंक माँ मरियम को हमें यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया कि यीशु के प्यार के कारण हम सब अब पाप के गुलाम नहीं हैं, लेकिन स्वतंत्र हैं। विदित हो कि 18 मीटर ऊंचे प्राचीन रोमन स्तंभ के ऊपर निष्कलंक माता मरियम की मूर्ति को 8 सितंबर 1857 को रखा गया था और धन्य पापा पियूस 9वें ने निष्कलंक गर्भाधान के धर्म सिद्धांत की घोषणा करते हुए कहा, मरियम एकमात्र मानव है जो मूल पाप के बिना पैदा हुई थी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।